Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. بشرى مبشرة، اسمه هم اس سلسلے میں ہم حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو بس اتنا سا بتا دیں کہ آخری والی کی بات کون سی تھی. فرحان بھائی تیار بیٹھ سکتے ہیں. جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، یہ شاید ہم نے پچھلی کلاس کے شروع میں پڑھا، آخر میں کیا چیز پڑھی؟ تو آخری کا پوچھا ہے نا، بالکل آخری بات. کسی کو یاد ہے؟
हाँ,
غزوہ بدر والا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے آخر میں، کہ غزوہ بدر میں کیسے نبی علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا باقاعدہ لڑنے کا، لیکن پھر ہو گیا تھا باقاعدہ لڑائی کا سلسلہ. لیکن حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے سپائنگ کے لیے بھیج دیا، بھیجا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ غزوہ بدر کے اندر شامل ہو ہی نہیں سکے تھے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے ان کو بدر کے جو مال غنیمت میں حصہ کی بٹائی ہوئی تھی تو اس میں ان کو بھی شامل کیا تھا، حالانکہ یہ لوگ لڑنے میں شامل نہیں تھے. حتیٰ کہ ایون عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا گیا تھا، تو وہ تو سپائنگ میں بھی شامل نہیں تھے، بلکہ وہ تو نبی علیہ السلام کے حکم پر اپنی بیوی کی خدمت کر رہے تھے، ان کی تیمارداری کر رہے تھے. تو اصل چیز نبی علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے، اور جو حکم مانتا ہے چاہے وہ عمل کر پائے چاہے وہ عمل نہ کر پائے، لیکن حکم اس نے مانا ہے تو پھر اس کو بھی وہی ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عمل سے یہاں پہ مراد جو ہے وہ والا عمل جو کہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، وہ نہیں اس میں شامل ہو سکا، لیکن حکم تو اس نے مان لیا نا. اچھا، تو یہ بات کر کے ہم نے آگے بڑھنا تھا. اچھا، غزوہ بدر میں نا ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا تھا غزوہ بدر سے ریلیٹڈ. وہ یہ تھا کہ ایک صحابی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد یمان، ظاہر ان کا نام یمان ہوگا، تو یہ دونوں جو ہے نا یہ آ رہے تھے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے. یہ راستے میں تھے کہ ان کا جو سامنا ہو گیا قریش کے لشکر سے، ٹھیک ہے؟ جو قریش کا لشکر آ رہا تھا نا لڑنے کے لیے ابو جہل کی سربراہی میں، تو ان لوگوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا. اور جب کہا کدھر جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ، یعنی یثرب اس زمانے میں جو نام تھا مدینہ منورہ کا، عام لوگ یثرب بھی کہتے تھے، ہم تو وہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تم وہاں جاؤ گے، تو تم نا وہاں پہ جا کر کے پھر ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے، اور تم جو ہے نا پھر ہمارے خلاف لڑائی کرو گے، تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے نا ان کی کہا کہ نہیں بھائی، ہم کوئی لڑائی وڑائی کرنے نہیں جا رہے، ہم تو وہاں پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے یعنی کافروں نے باقاعدہ ان لوگوں سے ایک پرومس لیا، وعدہ لیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں جانے دے رہے ہیں، لیکن تم وعدہ کرو کہ اگر کوئی لڑنے والا موقع آئے گا نا تو تم ان کے ساتھ مل کر کے ہمارے خلاف لڑائی نہیں کرو گے. تو ان کو تو پتہ بھی کچھ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لڑنے وڑنے کا تو ویسے ہی پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم تو بس وہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے وعدہ کر لیا. اب جب یہ لوگ وہاں پہنچ گئے نا تو نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا. کوئی کھڑکی تو نہیں کھلی یا دروازہ بند ہو سکتا ہے؟ وہ تو नमाज तुम बाद में पढ़ते हैं क्लास की, तो नबी अलैहिस्सलाम को जब पता चला ना कि ये लोग वादा करके आए हैं, तो अगरचे के यार मुकल्ला उस जमाने में बहुत वैल्यू होती थी ना, हर हर सोल्जर होता था उसकी, वहां तो नंबर ऑफ सोल्जर्स की बुनियाद पर, ये कौन सी वाली जनरेशन ऑफ वॉरफेयर होती थी, ये जनरेशन ऑफ वॉरफेयर जो है बिल्कुल ना फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन कहलाएगी ज्यादा से ज्यादा, फर्स्ट जनरेशन पता नहीं क्या था इनके दरमियान फर्क, तो उसमें तो ईच सोल्जर काउंटेड ना, तो बड़ा अहम था कि भी दो बंदे आ रहे हैं वो हमारे साथ मिलकर के हमारे दुश्मनों से लड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि इन लोगों ने वादा कर दिया था तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि नहीं तुम अपने वादे को पूरा करो, तुम नहीं जाओ हमारे साथ लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये लोग भी फिर नबी अलैहिस्सलाम के साथ गज़वे बदर के अंदर शामिल नहीं हुए थे, फिर बाकी गज़वों के अंदर शामिल हुए थे, लेकिन आप वादे की इतनी ज्यादा जो है वो इसको कीप किया करते थे वादे को ना। अच्छा, तो फिर ये वाकया करके हम आगे बढ़ते हैं कि सईद बिन जायद के बारे में जैसा जी ने भी फरमाया अपने इस बयान के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ तमाम गजवात में आपने शिरकत तो की और अपनी बहादुरी और शुजात के खूब जौहर दिखाए, यानी खूब अच्छे से बहादुरी दिखाई उसके अंदर, लेकिन किसी भी गजबे के मुताल्लिक उनके वाकयात की तफसील किताबों में हमें नहीं मिल सके, ठीक है। यानी गजवे बदर में कोई, गजवे बदर में तो शामिल ही नहीं हो सके, गजवे ओहद के अंदर के भाई उन्होंने ऐसे तीर खाए जैसे तलहा रहता, उन्होंने अपने अपने ऊपर अपने हाथों के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ आने वाले तीरों को रोका, और हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र आता है और दूसरे कोई कुछ सहाबा का जिक्र आता है, तो इनका कोई ऐसा जिक्र ही नहीं आता कि गजवाए उहद में उन्होंने कोई खास ऐसा काम किया हो, या गजवाए खंदक के अंदर कोई खास काम ऐसा कोई काम किया हो जो कि किताब में लोग लिख देते हैं, गजवाए तबूक के अंदर या गजवाए जो बाकी हुनैन वगैरह के अंदर। तो जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ जंगें लड़ी गई है ना आपसे जिनमें शामिल थे, उनको गजवात कहते हैं, उन गजवों में इनका कोई ऐसा खास जिक्र नहीं आता, लेकिन शामिल ये सारे गजवों में हुए थे, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो है वो, शुरू में भी हमने आपके साथ एक बात करी थी कि इनकी जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को नाम याद नहीं होता, सईद बिन जैद रहता उनका नाम, बहुत ज्यादा लोगों को याद नहीं होता, तो उसकी भी एक वजह क्या बताई थी कि इतना जो है ना वो फैटिंग वैटिंग का इनका वाकया नहीं है, ठीक है। तो आम लोग जो है वो फैटिंग वाले वाकयात को ज्यादा, फैटिंग हम खास मजाक में कह रहे हैं वाली बात, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो उनको कोई बात समझ नहीं आती, उनको खाली फैटिंग, वो उनको बोलना भी नहीं आता ना फाइटिंग, वो फैटिंग बोलते हैं फैटिंग, तो वो फैटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए, तो फैटिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब है, तो नहीं ये कुछ थोड़ी कभी हम फाइटिंग करने के लिए कोई थोड़ी पैदा किए गए, हम शैतान से फाइटिंग करने के लिए पैदा किए गए, ठीक है, हम ये इंसानों के साथ फाइटिंग करने के लिए पैदा नहीं किए गए, वो तो जब मजबूरी होती है एक्सट्रीम सिचुएशन पड़ती है तब इंसानों के साथ फाइटिंग करनी पड़ती है, वरना नहीं, वरना हम फाइटिंग करने के लिए नहीं दुनिया में भेजे गए, हम अल्लाह की बंदगी करने के लिए दुनिया में भेजे गए, ठीक है। तो मेरा अच्छा आगे भी फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक तन के जमाने खिलाफत में जब शाम पर बाकायदा फौज कशी मुसलमानों ने करी ना, उमर ने शाम के ऊपर यानी जो मगरिब की तरफ का एरिया है, वेस्ट की तरफ का, सही है, वहां पर फौजें भेजना ये उमर रज़ी अल्लाह ने शुरू किया था, और मशरक की तरफ यानी ईरान की तरफ फौजें भेजना ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के दौर में शुरू हो गया था, फिर उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह के दौर में कंप्लीट हुआ था ये वाला मामला, लेकिन मगरिब की तरफ तो शुरू ही यहाँ पे उमर रज़ी अल्लाह के दौर में हुआ था। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हों ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हों को फौज का सिपे सलार बना करके शाम की तरफ रवाना किया था, तो अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला जो है वो गोया के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे मुसलमानों के, उस फौज के जो कि शाम की तरफ गई थी, तो उन्होंने फिर हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हों को पैदल फौज का अमीर बनाया था, जो पैदल यानी पैदल का मतलब क्या कि जिनके पास इन्फेंट्री, हाँ इन्फेंट्री, ठीक है ना, दूसरी कौन सी होती है कैवलरी, ठीक है, जो घोड़े के ऊपर बैठ करके उनको कैवलरी कहते हैं, और पता नहीं ऊंट वालों को भी कैवलरी कहते हैं, उन सबको कैवलरी कहते हैं, ऊंट पे जो होते हैं या घोड़े पर जो होते हैं या शायद बाद में इंडिया में जो है हाथियों के ऊपर भी बैठ करके करते थे, तो वो कैवलरी होती है ये, तो इन्फेंट्री, हाँ इन्फेंट्री डिवीजन, तो पैदल होती है, तो इनको इन्फेंट्री का जो है ना वो अफसर मुतय्यन किया था उमर रज़ाना उन्होंने। अच्छा, वहां पर एक बहुत मेजर जंग हुई थी यरमूक की, जंगे यरमूक के नाम से बहुत मशहूर है, बड़ी जंगों में जैसे जंगे कादसिया बहुत मशहूर है, उसी तरह से जंगे यरमूक भी बहुत मशहूर है। इसके बारे में और किताबों में लिखा है कि इसमें बल्कि इस सईद बिन जैद रदान ही का कॉल के मुसलमान जो थे ना उनकी तादाद 24,000 थी, 24,000, और जो काफिर थे वो 1,00,000 से भी ज्यादा थे, ठीक है, या 1,00,000 से तकरीबन, इतने 1,00,000 कितना होता है 100,000, और मुसलमान कितने थे 24,000, ठीक है, यानी एक क्वार्टर से भी थोड़ा सा कम। तो कहते हैं कि जब उन लोगों की फौज आ रही थी ना तो ऐसा हमें लग रहा था कि जैसे पहाड़ आ रहा है, राइट, पहाड़ आ रहा है, इतने लोग इतने लोग इतने लोग। तो उस वक्त जो है ना हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो मुसलमान लश्कर था उनके सामने एक खिताब किया, खुतबा दिया उनको, और उनसे कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, यानी अल्लाह की मदद, वैसे अल्फाज में तो ये अल्लाह की मदद करोगे, क्योंकि अल्लाह की कौन मदद कर सकता है भाई, अल्लाह के दीन की मदद करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और दुश्मन के खिलाफ तुम्हारे कदम जमा देगा, ठीक है, और फरमाया कि तुम सब खामोशी इख्तियार करो, शोर मत ना मचाओ, आपस में बातें भी ना करो और अल्लाह से रुजू करो। अब मैदान जंग में खड़े हुए सामने से गोया के मौत आ रही है, राइट, इसको ऐसे ही कहेंगे ना वो, और काफिरों के पास सिर्फ जो है वो तादाद नहीं होती थी, उनके पास एक से एक हथियार भी होते थे उस जमाने के, जो बेहतरीन हथियार होते वो लेकर के आ रहे होते थे, गोया कि आप सामने खड़े हुए हैं, इमेजिन करें ना वो लोग आपसे क्रिकेट खेलने नहीं आ रहे हैं वो आपसे, राइट, फुटबॉल खेलने नहीं आ रहे हैं वो आपसे, वो आपको मारने के लिए आ रहे हैं, सही है। तो जो दहशत तारी होती होगी दिलों के ऊपर हम इमेजिन नहीं कर सकते उस चीज का ना, अल्हम्दुलिल्लाह में इमेजिन करने के शौक भी कोई नहीं है, सही है, तो अल्लाह बचाए सबको इस किस्म की मौतों से। फरमाया कि तुम लोग खामोशी से अपने नेजों को जो तुम्हारे पास है उनको छुपा करके रखो, दुश्मन को नजर भी ना आए कि तुम्हारे पास क्या है, छुपा करके रखो और दिल में अल्लाह ताला को याद करो, ठीक है, और उस वक्त तक खामोश रहो जब तक कि मैं तुम्हें एकदम से हमला करने का हुक्म ना दे दूं ना, खामोशी से खड़े रहो अल्लाह को याद करते रहो, ठीक है। तो ऐसे जो है ना फिर मुसलमान जो होते थे ना वो मुसलमान फिर ऐसे लड़ते थे, वो खाली अपने हाथ की बुनियाद पर, अपने ताकत की बुनियाद पर, अपने हथियारों की बुनियाद पर नहीं लड़ते थे, वो अल्लाह की मदद की बुनियाद पर लड़ते थे, ठीक है। तो ऐसे इन लोगों ने भी लड़ा और फिर बिलाखिर अल्लाह ताला ने इन लोगों को फतह अता फरमाई, और दमिश्क का जो शहर था डमास्कस, जो शाम का उस वक्त और आज भी शाम का कैपिटल है, दारुल हुकूमत, वो फतह हो गया इसके बाद। अच्छा, फिर जब दमिश्क फतह हो गया तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्ह ने फौरन ही ना सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु को दमिश्क का गवर्नर बना दिया और कहा कि आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह संभालें, कोई मैसेज आए तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे दसवें से साथ में, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप यहाँ के गवर्नर हैं। तो सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात तो मान ली और गवर्नरशिप शुरू कर दी, लेकिन थोड़े दिन के में ना उनको तकलीफ होनी होगी, यार ये क्या, मैं यहाँ पे बैठा हुआ गवर्नरशिप कर रहा हूँ और मेरे जो साथी हैं वो मैदान जिहाद के अंदर, मुसलमान तो आगे बढ़े जा रहे थे ना, ठीक है, मुसलमान मुस्तकिल जंग में थे और आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, तो इनको बहुत फिक्र हुई कि मैं तो जिहाद से पीछे रह गया हूँ। तो इन्होंने हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को खत लिखा और उनसे कहा कि ईसार करना, यानी ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा इसका मतलब था कि ईसार करना बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, कि अपने भाइयों को अच्छा काम करने देना, अपने भाइयों को अच्छी चीज दे देना, खुद जो है वो कम चीज की ओर राजी हो जाना, इसको ईसार कहते हैं, प्रेफरिंग अदर्स अपॉन योर सेल्फ, ठीक है, इसको ईसार कहते हैं। तो कहते हैं कि ईसार करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना बड़ा ईसार नहीं कर सकता भाई, ठीक है, कि आप लोग तो जयाद करें और मैं यहाँ पे बैठा रहूं, नहीं, ये इशार मुझसे नहीं होता, मेरा खत मिलते ही ना आप किसी दूसरे बंदे को गवर्नर बना करके भेज दें, मैं वापस आ रहा हूँ, नहीं, तो उन्होंने ऐसा खत लिखा। तो वो उनको भी बात माननी पड़ी और उन्होंने हजरत यजीद बिन अबी सुफियान को दमिश्क का गवर्नर बना करके भेजा और ये वापस मैदान जंग के अंदर पहुंच गए। हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह, सीनियर थे ना, बहुत ही सीनियर मोस्ट सहाबा में से था। कोई कहे या हो सकता है आप ये सवाल का क्या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, यजीद बिन अबू सुफियान, तो अब बिन अबी सुफियान, तो अब ये वाले अबी सुफियान मुआविया तारण के वालिद अबी सुफियान थे, किसी को अगर पता हो तो बता सकते हैं, वरना और अबी सुफियान भी होते थे। खैर, ये डायरेक्ट अबी सुफियान के बेटे यजीद, तो ये सहाबी थे, तो वो जो यजीद था वो सहाबी तो नहीं थे, वो तो मुआविया तारण का बेटा, उसके बारे में फिर बहुत सारी चीजें। नाम भी मतलब, एक तो वो यजीद नाम तो मशहूर हो गया वो करबला हजरत हुसैन तारण के वाक़े से, लेकिन ये यजीद का जो नाम है ये अरबों में बहुत कॉमन है, ठीक है, और आज भी इस नाम को रखा जाता है यहाँ। हमारे यहाँ तो खौफ के मारे कोई रख नहीं पाता ना, वो मुआविया को पकड़ लेते हैं उठा करके गायब कर देते हैं। हमारे एक दोस्त है मुआविया, उनको पकड़ लिया, गायब कर दिया ना उनको, तो पुलिस वालों ने जब पूछा उछा कि भाई क्या हो गया, तो बताया कि उसका नाम क्या है बच्चे का, कहते हैं मुआविया, कहना अच्छा मुआविया नाम रखोगे तो यही होगा नाम, नहीं लिटरली उनको ये जवाब दिया गया, बाप आपको ये नाम क्यों रखा था, ये हाल है, और ये आज से कई साल पहले की बात है, आप तो अल्लाह ही रहम करे, पता नहीं क्या होने वाला है। तो खैर, तो अरब लोग तो रखते हैं यजीद का नाम, तो नाम कैसे 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 नाम जो है ना, सोचें, सईद, सईद बिन जैद अतान का तो वाकया पढ़ है, सईद का मतलब क्या होता है? सआदतमंद, खुशबख्त, जिसको कि बहुत अल्लाह ताला की तरफ से खुशी मिली हो, है ना, क्या चुन चुन करके नाम रखते थे। और यजीद, यजीद का मतलब क्या? ज्यादा, ज्यादा यजीदू, जिसमें इंक्रीज हो, ठीक है, तो नाम रखते हुए बहुत जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। माशाल्लाह, अरबों के नाम तो एक से एक बढ़कर के नाम होते हैं। हम एक दफा अमेरिका में काम करते थे, तो जॉब वालों के साथ फिर लंच का टाइम होता, तो लंच पे कभी कभी चले आया करते थे, जाहिर है वहां पे फिर वो हम सब्जी खा रहे होते थे खाली पेट करके, तो हमारे साथ दो चार लड़के ही होते थे बस, सारे गोरे, कोई कुछ चीन चीन। एक दफा बैठे बैठे ना, शायद मैं किसी क्लास में सुना भी चुका हूँ ये वाला बात, तो एक दफा बैठे हुए तो उन लोगों ने ऐसी बात शुरू कर दी कि भाई हम ये देखते हैं कि हमारे जो नाम है ना, नामों का मतलब क्या है। तो एक ने कहा मेरा नाम है केविन, केविन का क्या मतलब, ये नहीं पता केविन का क्या मतलब है। दूसरे का नाम, तो दूसरे का नाम जो था विल था, विल का क्या मतलब पता नहीं। तीसरे ने कहा मेरा नाम है टॉड, या टॉड का क्या मतलब पता कुछ नहीं मुझसे पूछने के, मैंने कहा मेरा नाम है काशो, मैं काशो का क्या मतलब है, काशो का मतलब होता है द वन हु रिवील्स, द वन हु ओपन्स, है ना, पूरा तफसील मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। हमारे नाम ऐसे नहीं है कि जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस बात को उनको उनको पसंद आई ये बात कि हाँ वाकई यार हमारे नामों को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें ये विरासत जो है ना वो अरबों से ही मिली है। अच्छा, फिर उसके बाद बाला बक्का का वाकया हजरत ने नकल किया था, तो बाला बक्का एक जगह है, ये आज के दौर में लबनान का जो मुल्क है उसके अंदर, बाला बक्का, जब आप अरबी ग्रामर पढ़ते हैं ना नहव की किताब, तो नहव की किताब के अंदर बाला बक्का का जिक्र जरूर आता है, मुरक्कबे तौसीफी, नहीं तौसीफी के नहीं, बिनाई के लिए, नहीं वो जोड़ने के लिए, कंस्ट्रक्शन बिनाई, मुरक्कबे बिनाई, तो बाला और बक्का ये दो अलग अलग नाम थे। बाला जो था वो उस शहर के बुत का नाम था, है ना, और बक्का जो था वो वहां के शायद किसी शहजादे का, क्या
शहर कोई पक्का है नहीं,
नहीं उसका नाम ही बाला बक्का शहर क्यों पड़ा, क्योंकि बाल जो था वो बुत का नाम था,
बाल का शहर था, आई
और बक्का जो है, बक्का भी किसी
थिंक बक्का मीन्स
वहां
शहर,
के बादशाह का नाम बक्का था, या कुछ था इस तरह का,
दोनों बुत के नाम,
दोनों बुत के नाम थे, या
बाल एक बुत का नाम था और बक्का भी एक बुत था।
बक्का भी एक बुत का नाम था, जाने कंफर्म हो गया अब तो। तो अब दो बड़े बड़े बुत उस शहर में होते थे, तो उन्होंने उन दोनों को जोड़ करके जो है ना वो शहर का नाम बाला बक्का रख दिया, ठीक है, तो इस तरह से शहरों के नाम भी कोई ना कोई मानी रखते थे, ठीक है, तो वो बाला बक्का का नाम आज भी जो है वो मौजूद है वहां पर लबनान के अंदर। तो वहां पर जब जिहाद के लिए मुसलमान पहुंचे ना, तो इनको जो है अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सईद बिन जैद रतान को 300 पैदल मुजाहिदीन इन्फेंट्री वाले और 500 कैवलरी वाले दे करके आगे रवाना किया बाला बक्का की तरफ। तो वहां पे पहुंचे तो इनकी ड्यूटी लगी, बाबे जबल एक जगह है वहां पर, तो उनसे कहा गया कि भाई मुसलमानों को ना आप जरा ऑर्गेनाइज करके वहां पे रखें और रोमियों से जो है ना मुसलमानों की आप हिफाजत करें। तो इरादा कोई जंग का नहीं था, बस हिफाजत के इरादे से इनको भेजा गया था। लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो ईसाइयों ने ना बाकायदा हमला कर दिया। हरबीस नाम का एक सरदार था ईसाइयों का, तो हरबीस के साथ ईसाइयों की फौज ने इनके ऊपर हमला कर दिया और इनके साथ लड़ाई शुरू हो गई। यानी सिर्फ 500 सवार थे और 300 पैदल लोग थे, सिपाही थे। तो इनके साथ जब लड़ाई शुरू हो गई तो ईसाइयों को शिकस्त होनी शुरू हो गई। ठीक है, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीछे से मैसेज भेजा कि भाई जब ईसाई हार करके भागना शुरू हो जाए ना तो फॉलो नहीं करना उन लोगों, बस भागने दो उन लोगों, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इन देयर लैंड, अभी हमने इस लैंड को फतह नहीं किया है और ये कोई दरमियान वाली जगह नहीं है, तो उनके शहर हैं पूरे के पूरे, तो अगर तुम उनको फॉलो करोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें फंसा करके जो है ना तुम्हारे ऊपर काउंटर अटैक कर दें, तुम्हारा नुकसान हो जाए। ठीक है, तो अबू उबैदा तो उन्होंने पीछे मैसेज भेजा कि भाई अगर वो भागने लगे तो उनको भागने देना, डोंट फॉलो देम। लेकिन इनको जो है ना वो ये मैसेज पहुंचा नहीं, हजरत सईद बिन जैद होता उनको मैसेज नहीं पहुंचा। तो अब इन्होंने जो है ना जब ईसाई भागना शुरू हो गए तो इन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और बिलाखिर जा करके इन्होंने अपने साथियों के साथ ईसाइयों का मुहासरा कर दिया, इनको सराउंड कर लिया। फिर उसके बाद ये अबू उबैदा रज़ा उनको खबर देने के लिए चले गए कि हमने ईसाइयों को सराउंड कर लिया है, इनको इनको फंसा लिया ना एक जगह पे जा करके। तो अबू उबैदा रज़ा जो है वो वापस आ गए, सॉरी अबू उबैदा उनको खबर देकर के वापस आ गए। इधर से ईसाइयों को बहुत परेशानी हुई तो उन्होंने आपस में मशवरा करके सुलह करने का इरादा कर लिया। ठीक है, यानी जब इन्होंने सराउंड कर लिया ईसाइयों की फौज को तो ईसाइयों का फिर उन्होंने कहा अच्छा भाई हम तो अब यहाँ फंस गए, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि ओके वी वांट टू सरेंडर। ठीक है, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको बतानी थी वो ये कि जब उन लोगों ने ना सरेंडर का मैसेज भेजा तो ईसाइयों का सरदार वो हजरत सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु से बातचीत करने के लिए बाहर निकला। सही है, तो उसने आने से पहले अपना जो कीमती लिबास था, क्योंकि जो ईसाइयों के सरदार होते थे वो बहुत सोने चांदी से लदे हुए सरदार वो कपड़े पहना करते थे ना, ठीक है, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन बैतुल मुकद्दस पहुंचे थे तो ईसाइयों के कब्जे में था बैतुल मुकद्दस। ठीक है, यहूदियों के कब्जे में बैतुल मुकद्दस तो अब जाकर के आया है, वो मूसा अलैहि सलाम के जमाने में होता था, या उस मूसा अलैहि सलाम के जमाने, मूसा अलैहि सलाम के बाद के जमाने में होता था उनके कब्जे में, फिर उसके बाद उनको मारपीट करके अल्लाह ताला ने बाहर निकलवा दिया, अब कहीं जाकर के दोबारा उनके कब्जे में बैतुल मुकद्दस आया। दरमियान में जो इतना सारा अरसा रहा है ना इसमें ईसाइयों के कब्जे में रहा हमेशा बैतुल मुकद्दस यानी फलस्तीन का जो, तो उमर रज़ान के जमाने में मुसलमान सारा शाम का एरिया फतह करते 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 जब बैतुल मुकद्दस तक पहुंच गए और अब था कि बस बैतुल मुकद्दस के ऊपर यानी जो अर्ज मुकद्दस फलस्तीन का जो आप कहते हैं उसको, तो अब उसके ऊपर अटैक करना है, तो ईसाइयों ने पैगाम भेजा कि भाई ऐसा करो कि आप जो है ना हम पे अटैक ना करें, हमें कुछ ऐसी बातें पता हैं आपके बारे में कि अगर हम वो कंफर्म कर लें ना बस एक दफा कि वाकई आपके अंदर वो सारी निशानियां मौजूद हैं तो हम आपसे लड़ेंगे ही नहीं, हम आपको खुद ही अपना शहर हवाले कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम वो निशानियां जो हैं वो आपके अमीर के अंदर खुद देखना चाहते हैं। तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को मैसेज भेजा कि भाई ये लोग ये कह रहे हैं कि लड़ाई वड़ाई हम नहीं करेंगे, बस आप अपने अमीर को बुला लीजिए यहाँ पर, हम उनको देखेंगे, अगर तो सारी चीजें कंफर्म हो गई तो फिर हम खुद ही शहर की चाबी आपके हवाले कर देंगे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो बाकायदा सफर करके अपने गुलाम के साथ आए। ठीक है, और यहां पर आकर के जब ये शहर के बाहर पहुंचे ना तो आगे से वो ईसाइयों के आए बड़े बड़े जो उनके पोप्स थे और लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस भी थे, सारे के सारे लोग बाहर आए कि अच्छा मुसलमानों का सरदार आ रहा है, और मुसलमान तो इस वक्त पर्शिया के ऊपर भी कब्जा कर चुके हैं, और सारा का सारा जो था वो बलाद-ए रोम उसके ऊपर भी कब्जा कर चुके हैं। तो कोई बहुत ही बड़ा कस्म का बादशाह होगा, और सोने चांदी के अंदर जो है ना उसने वो गर्क होगा, डूबा हुआ होगा सोने चांदी के अंदर, एक से एक कपड़े पहना हुआ होगा। और तो जब वो आए तो उन्होंने कहा भाई ये तो बादशाह साहब हम नजर ही नहीं आ रहे, किधर है भाई बादशाह, किधर है। तो जब पूछा गया ना कि बादशाह किधर है, तो पता चला कि ये जो आ रहे हैं ना फटे हुए कपड़े में, पैबंद लगे हुए कपड़े के अंदर, तो यही है मुसलमानों के बादशाह। ठीक है, तो हैरान रह गए वो लोग, खुद जो आए थे वो तो सोने चांदी में लदे हुए थे, एक से एक उनकी हालात जो है वो किताबों में लिखे हुए। तो ये जो बंदा था ना जो कि फिर सुलह के लिए इन लोगों के पास आया, तो इसने अपने सारे कीमती लिबास जो है ना वो चेंज करके मोटी ऊन के कपड़े पहन लिए, सारे हथियार इसने फेंक दिए, और इंतहाई आजजी, इनके सारी और जिल्लत व ख्वारी के साथ अपने चंद सिपाहियों के साथ इनके पास आया, सईद बिन जैद रज़वान के पास आया। ठीक है, तो हम आपको कहना यहाँ पे ये चाह रहे थे कि जिस तरह से ये आया था ना, क्यों आ रहा था ये, क्योंकि इसने मुसलमानों के साथ लड़ाई करी हुई थी। ठीक है, अब ये मुसलमानों से अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए आया था और सुलह करने के लिए आया था। तो सुलह करने से पहले इसने क्या जरूरी समझा कि भाई मैं जरा ऐसी हालत में आऊं कि जिससे कि पता चले कि आई एम रियली रियली सॉरी, ठीक है, एंड आई वॉन्ट योर फॉरगिवनेस। ठीक है, तो उसके लिए उसने हथियार भी खत्म कर दिए अपने पास, हथियार भी छोड़ दिए। क्या मतलब हथियार छोड़ने का मतलब क्या होता है, जब आप अपने गन्स एम्यूनेशन वगैरह जो है वो रख देते हैं, उनके बगैर आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि अब आप लड़ना नहीं चाहते। ठीक है ना, अब आप लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, लड़ाई आपने छोड़ दी। ठीक है, और जब आप कपड़े ऐसे पहन रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये बताना होता है कि मैं अपने आप को बिल्कुल ही हारा हुआ तक समझता हूं, आजिज, आजिज का मतलब होता है हारा हुआ। तो इस तरह के कपड़े पहनने का भी मतलब ये होता है कि ये बताया जाए लोगों को, देखने वालों को, कि भाई मेरी जितनी शान थी ना वो सारी शान जो है वो खत्म हो गई और मैं हार चुका हूं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फिर आपकी जो अपोलॉजी होती है उस अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और आपको माफ कर दिया जाता है और फिर आपको जो है वो छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यही चीज जो है ना, ये जब कोई अल्लाह ताला के सामने माफी के लिए जाता है ना तो उसको भी यही काम करने होते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि अल्लाह ताला के साथ जो उसने जंग शुरू करी हुई थी ना तो उस जंग को छोड़ना होता है। ठीक है, यानी जिन चीजों से वो अल्लाह से जंग कर रहा था, जिन चीजों को यूज करके वो अल्लाह से जंग कर रहा था, उन्हीं को तो हथियार कहेंगे ना, उन हथियारों को छोड़ना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। क्या मतलब कि गुनाहों से तौबा करनी होती है। सही है, ये गुनाह जो होते हैं ना ये अल्लाह ताला के साथ लड़ाई होते हैं। ठीक है, ये गोया के गुनाह जो हैं ये वो वेपन्स हैं कि जिनकी मदद से नाउज़ बिल्ला हम अल्लाह ताला से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल बात हो रही थी कुछ अंकल्स के दरमियान बैठे हुए थे हम, कि अल्लाह ताला ने सूद के बारे में फरमाया कि जो सूद लेता है ना तो वो तो नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूद लेता है वो तो अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग में होता है, कुरान करीम की आयत है सॉरी। ठीक है, वो तो अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग में होता है। गोया के सूद इतना बड़ा गुनाह है कि गोया के आप उसको बतौर एम्यूनेशन के यूज कर रहे होते हैं अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग करने में। तो हर गुनाह अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग ही होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि सूद गोया के बहुत बड़ा वेपन है। ठीक है, उस बड़े वेपन को यूज करके आप अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग कर रहे हैं, लेकिन बाकी गुनाह जो हैं वो भी छोटे छोटे वेपन्स ही हैं जिसको यूज करके आप अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हर गुनाह को जो है छोड़ना होता है। जी
कि आ गया था तो हार जाने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ
इंसान जंग में हार जाता है।
सरेंडर करते हैं या फिर लोग बड़ी सवाल देकर लगा लेंगे।
हाँ जी सुनो,
अल्लाह ताला के सामने तो अभी हम वहां पहुंचे नहीं। हम जब पीछे जो बात कर रहे थे ना कि जब इंसान अपने अच्छे अच्छे कपड़े चेंज करके जो है वो फटे पुराने कपड़े पहन लेता है, तो वो शो ये कर रहा होता है कि भाई मैंने अपनी हार मान ली है, ठीक है, मैं आजिज हो चुका हूं, मैं हार चुका हूं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब अल्लाह ताला के सामने तौबा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो गुनाहों से तौबा करनी होती है, छोड़ना होता है ना गुनाहों को, और फिर अल्लाह ताला के सामने आजिजी इख्तियार करनी होती है कि अल्लाह आई लॉस्ट इट, आई लॉस्ट, आई लॉस्ट, ठीक है, नॉट नॉट लॉस्ट इट, आई लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट, मैं जंग हार चुका, मैंने मान लिया कि मैं जंग हार चुका, ठीक है, तो अब मैं आपसे मजीद जंग नहीं करूंगा। इसी वजह से तौबा के अंदर सबसे पहली शर्त क्या है कि अपनी गलतियों के ऊपर शर्मिंदा होना, ठीक है, और दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह ताला से दोबारा गुनाह करने का इरादा खत्म करते हैं, ठीक है, कि अब मैंने जो है ना वो गुनाह नहीं करना। क्या मतलब कि अब मैं हार चुका हूं, जो बंदा हार चुका होता है तो वो कह देता है ना कि अब मैं आपसे मजीद नहीं लड़ाई लड़ सकता, ठीक है ना, आई हैव गिवन अप। तो इसी तरीके से इन्होंने भी इन लोगों ने भी यही काम किया कि हथियार फेंक दिए, नहायत आजिजी इनकी सारी और जिल्लत ख्वारी के साथ अपने चंद सिपाहियों के साथ ये हजरत सईद बिन जैद अतान के पास आ गया, और उनकी हालत देख करके सईद बिन जैद अतान उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़ल्ला लना जबाइरहुम व अमक्कना अला मतारिकतिहिम, कि तमाम तारीफ अल्लाह ताला की रही है कि जिसने हमारे सामने इन सरकशों को जलील व ख्वार कर दिया और हमें उनके सरदार पर कुदरत और फौकियत बख्श दी, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने हमें कुदरत दी है, अल्लाह ताला ने हमें फौकियत दी है, इस वजह से ये हारे नहीं है कि हम लड़ रहे थे, हमने बड़ी बहादुरी के जौहर दिखाए और हमने जो है वो बड़ा इनको परसू किया और जान जोखिम में डाल दी अपनी, इस वजह से ये हार गए, नहीं, अल्लाह ताला ने हमें इनके ऊपर कुदरत अता फरमाई है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए हुए हैं वो देख लेते हैं इससे नजर आने। अच्छा, सरेंडर, ही इज ह्यूमिलिएटेड एंड आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। जी, इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू बाई ए कार बट ही डजेंट हैव मनी बट अदर पर्सन नेक्स्ट टू हिम हैज मनी, द अदर पर्सन बाइज द कार फॉर सम प्राइस एंड ही विल सेल इट फॉर फ्री बट ही टेल्स हिम ही हैज टू गिव डबल इन इंस्टॉलमेंट, इट इज कॉल्ड सूद।
क्लास
ये जो है ना आप कीजिएगा सवाल अगली क्लास में, जब फाइनेंस वाले लोग प्रेजेंटेशंस करेंगे ना तो आप वो सवाल कीजिएगा, आपका तो सवाल ही मुझे अभी तक तो समझ में नहीं आया, और मेरे वैसे भी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो सूद की तारीफ आप बाद में पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल, अच्छा फिर खैर इनको जो है वो उनके ऊपर फतह मिल गई और फिर पूरी जो है ना वो एग्रीमेंट्स तय हो गई कि भाई हमने जो गिव अप कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, तो मुसलमान फिर हमारी हिफाजत भी करेंगे और उसके बदले में हम मुसलमानों को ये जो है ना वो टैक्सेस भी देंगे, ठीक है। दो ऑप्शंस होते हैं काफिरों के पास, जब मुसलमान फतह पा लेते हैं ना काफिरों के ऊपर तो काफिरों को फिर वो दो ऑप्शन देते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि भाई आप मुसलमान हो जाए, आप आखिरत भी आपकी बन जाएगी, ठीक है, तो आप मुसलमान हो जाए, सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप मुसलमान नहीं होना चाहते तो हम आपको जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान हो कलमा पढ़ो वरना हम तुम्हारे पेट में जाना वो निदा घोंप देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। तो फिर अगर आप मुसलमान नहीं होना चाहते, आपकी मर्जी, आप नहीं होना चाहते, तो फिर आप ऐसा करें कि आप हमें कुछ टैक्स मनी दिया करें, हम उसके बदले में आपकी हिफाजत किया करेंगे, ठीक है, और हम कंप्लीटली इंश्योर करेंगे कि कोई दूसरा भी आकर के आपको नुकसान ना पहुंचा सके, हम तो आपको नुकसान हरगिज नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर अदर एनिमीज एज वेल, दूसरों से भी तुम्हारी हिफाजत करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है वो जिजिया टैक्स वसूल करना कहते हैं कि जिसके बदले में मुसलमान उनको भाई प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, तो भाई फॉर फ्री तो प्रोटेक्शन नहीं देता ना कोई, तो आप फिर टैक्स दें या ये मुसलमान हो जाए, मुसलमान हो जाएंगे तो फिर हमें और आप में सारा फर्क ही खत्म हो जाएगा, जिस तरह हम हैं मुसलमान उसी तरह आप हैं मुसलमान, ये कोई थोड़ी होता है कि हम कहते हैं नहीं हम अरब मुसलमान हैं, हम ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं, आप शामी मुसलमान हैं, आप दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं है इस्लाम के अंदर, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी चीजें इन दोनों के दरमियान तय हो गई और उनने चंद जो हजरत ने लिखी है ना, तो वो आपको पढ़ के सुना देते हैं कि वो शराइत जो तय करी वो ये थी कि भाई आइंदा साल से अपनी जमीनों का खिराज हमें दिया जाएगा, ठीक है, यानी कुछ प्रोपोर्शन जो है ना आपकी जमीन में जो प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो वो प्रोपोर्शन वो आप हमें देंगे, यानी मुसलमान हुकूमत को देंगे। हर साल आप जिजिया टैक्स अदा करेंगे, आइंदा आप हमारे खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे, यानी नो मोर फाइटिंग, ठीक है, और किसी दूसरी सल्तनत से भी आप मुआहदा नहीं करेंगे कि किसी दूसरे के साथ आपने टीम अप करके हमारे खिलाफ जो है जंग करना शुरू कर दी, ये आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किसी दूसरे सल्तनत से मुआहदा नहीं करेंगे कोई भी। और सुलह के बाद जो बातें हमारे दरमियान तय हो गई, तो उसके बाद फिर हम कोई नई शर्तें नहीं लगाएंगे, ना आप कोई नई शर्त लगाएंगे, ना हम अपनी तरफ से कोई नई शर्तें लगाएंगे, बस जो शर्तें तय हो गई इसी के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे। और आखिरी चीज ये थी कि जो आपके चर्चेज हैं, सिनेगॉग्स हैं, आपके अपने इबादत खाने हैं, उनको तो हम तोड़ के खत्म नहीं करेंगे, लेकिन कोई नए चर्चेज नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, नए कनीसा नहीं बनाए जाएंगे, बस जो है बस उन्हीं के अंदर आप काम चलाएं, ठीक है। तो मुसलमान जो प्रॉपर इस्लामी मुल्क होता है, तो उसके अंदर फिर दूसरे जो मंदिर और ये सब होते हैं ना, तो उनकी इजाजत नहीं होती बनाने की। अच्छा, फिर इसके बाद एक बड़ा वाकया, उमर रज़ान की खिलाफत ख़त्म हुई, आप रज़ान भी शहीद हुए, फिर उनके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ान की खिलाफत आई। उस्मान गनी रज़ान का जो खिलाफत थी 12 साल की खिलाफत थी, उसके फर्स्ट 6 ईयर्स जो हैं उनमें तो बहुत अच्छा मामला रहा, मुसलमानों की जो जो बाउंड्रीज थी वो बहुत और भी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लेकिन फिर आखिर आपको पता है उस्मान गनी रज़ान का हम पूरा वाकया पढ़ चुके हैं कि फिर फितने शुरू हुए, यहूदियों ने जो है ना वो बिल आखिर वही किया जो वो हमेशा से करते आ रहे हैं, ईसाइयों के यानी ईसा अलैहि सलाम के लोगों के साथ भी उन्होंने यही किया था, फिर मुसलमानों के साथ भी उन्होंने यही किया कि फिर वो भेस बदल करके अपने आप को मुसलमान शो करके आ गए और कहने शुरू हो गए कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन असल में वो यहूदी ही थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये उस्मानी गनी रज़ान के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू किया कि ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, उन्होंने ये काम ठीक नहीं किया, उन्होंने वो काम ठीक नहीं किया, इस तरीके से फिर उन्होंने मुसलमानों को, जो कि पुराने मुसलमान तो उनकी बात नहीं सुनते थे, सहाबा कराम तो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनते थे, लेकिन जो नए नए लोग दाखिल होते हैं वो जरा कच्चे ही होते हैं ना शुरू शुरू में, तो उन्होंने फिर इनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया, जब सुनना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली फिर आपके ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, इसी वजह से ऐसे लोगों की बात सुननी ही नहीं चाहिए, ठीक है, जो कि अमीर के खिलाफ उल्टी सीधी आपको बातें बोलता हो और निजाम के खिलाफ बात करता हो, तो उनको उनको सुनना भी नहीं चाहिए, हकीकत यही है, सुनना नहीं चाहिए, ठीक है भाई, ये वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि जब आप सुनते हैं तो फिर आपके ऊपर इफेक्ट होता है, जब भी तो नॉन मुस्लिम्स भी क्या करते थे, मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, वो अपने मुशरिकीन साथियों को कहते थे ये जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको सुनो ही नहीं, इनकी बात ही नहीं सुनो, ठीक है ना, और अगर ये आकर के शुरू हो जाए ना तुम्हें बताना, तो तुम जो है ना वो शोर करना शुरू कर दो, तुम जो है वो गाना गाना शुरू कर दो, या तुम जो है वो वहां से भाग के कहीं और चले जाओ, या इनको सुनने की जरूरत क्या है, वो लड़कियां हैं गाना गाती हैं, उनका गाना जाकर के सुनो, ठीक है, क्योंकि तुम सुनोगे ना तो सुन करके तुम्हारे दिमाग के अंदर वो अच्छी अच्छी बातें आएंगी, और फिर तुम उनको डिनाई नहीं कर सकोगे, उनके खिलाफ नहीं जा सकोगे, एंड यू विल गेट कैरिड अवे, ठीक है। तो सुनना असल चीज है, अब हमें फैसला ये करना होता है कि हम किसको सुनते हैं, ठीक है, हम पहले चेक करें कि कौन अच्छा है, सच्चा है, नेक है, दयानतदार है, शरीफ है, तो हम उसको सुने तो उसका असर हमारे ऊपर होगा, ठीक है, और जो गंदे लोग हैं, मारते हैं दूसरों को, झूठ बोलते हैं, बदतमीजी की बातें करते हैं, बेहयाई की बातें करते हैं, जुल्म करते हैं, तो हम उनको ना सुने, ठीक है, तो ये हमें करना होता है कि भाई किसको सुनना है किसको नहीं सुनना, लेकिन ये बात अल्लाह ताला ने सेट कर दिया है पहले से कि अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारे ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है, तो अगर तुमने अपने आप को इफेक्ट से बचाना है तो तुम्हें क्या करना होगा, जल्दी से बताएं,
कान
कान बंद करना होगा, और आप क्या कह रहे, यही बोल रहे, कान बंद करना होगा, ठीक है, यानी सुनने से अपने आप को बचाना होगा, ठीक है। अब ये फैसला क्या है, ये यानी अल्लाह ताला ने ये पहले से फैसला कर दिया है, क्या मतलब इसका, सुनोगे तो इफेक्ट होगा, और अगर तुमने अपने आप को इफेक्ट से बचाना है तो सुनना बंद करना होगा। ये अल्लाह ने ऑलरेडी सेट कर दिया, अब हम उसको चेंज कर ही नहीं सकते। क्या मतलब कि हम कहें कि नहीं मैं सुने बगैर इफेक्ट हो जाएगा मेरे क्या मतलब कि सुने बगैर मेरे ऊपर इफेक्ट हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता सुने बगैर इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, या हम कहें कि मैं सुनूंगा लेकिन मैं इफेक्ट नहीं लूंगा, ठीक। हम कहें कि मैं सुनूंगा लेकिन मैं इफेक्ट नहीं लूंगा, भाई आपके हाथ में कोई थोड़ी है कि आप सुनेंगे और आप इफेक्ट नहीं लेंगे। यानी अल्लाह ने सेट कर दिया कि सुनोगे इफेक्ट होगा, नहीं सुनोगे इफेक्ट नहीं होगा। अब हम उसको चेंज को थोड़ी कर सकते। ये यानी ये ऑप्शन हमारे पास अल्लाह ताला ने दिया ही नहीं, तो फिर ऑप्शन क्या दिया अल्लाह ताला ने हमारे पास? चलें जी, कौन बताएगा? नहीं, आप बहुत बता दो, कोई और बताए, कोई और बताए। तो करिए
नहीं
नहीं, ऑप्शन क्या दिया अल्लाह ताला? कोई दूसरा बच्चा जाए। आपने जवाब दिया अभी तक? नहीं, आपने जवाब नहीं दिया जी। नहीं, हमारे पास सुने ना नहीं सुने, आप ये था कि सुने नहीं। ऑप्शन क्या हमारे पास?
किसको सुनना हो
हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि हम किसको सुने सुनना चाहते हैं, अच्छों को सुनना चाहते हैं कि बुरों को सुनना चाहते हैं, बस ये हमारे पास है। जी ठीक है, तो हम अच्छों को सुने ठीक है, और बुरों को ना सुने, यानी जो बुरे काम करें, बुरों से मतलब क्या होता है, बुरे काम करने वाले हम उनको ना सुने, बस ये हमारे पास ऑप्शन है। हम जिसको अच्छा समझते हैं उसको सुने, जिसको हम बुरा समझते हैं उसको हम ना सुने। सुनेंगे तो इफेक्ट होगा, नहीं सुनेंगे तो इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा चले, जिसको समझ में आया वो आ गया, और इंशाल्लाह उसको फायदा होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो कोशिश करे, उसको भी समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
मेरा मैसेज था।
अच्छा जी, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था ये चश्मा लिखा, अभी मुझे टाइम लगेगा इसे यूज होता है। तो फिर उस्मान गनी रतान की जो शहादत हुई, तो उसके बाद ना फिर ये उस वक्त कूफा के अंदर थे। कूफा एक इराक का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, तो वहां पर थे जब इन्होंने उस्मान गनी रतान की शहादत के बारे में सुना। तो कूफा की मस्जिद में इन्होंने लोगों को खुतबा दिया और कहा कि लोगों, आमतौर पर उनको उनको भी अंदाजा था कि कूफा वाले जो है ना, दे हैव ए हैंड इन द शहादत ऑफ इमाम ऑफ हजरत उस्मान अतान, ठीक है, वो शामिल थे शहादत में उस्मान गनी की। तो उन्होंने कूफा वालों को खुतबा दिया और उनसे कहा कि तुम लोगों ने जो उस्मान गनी के साथ किया है ना, तो इतना बुरा काम है वो, इतना बुरा तुमने किया है कि अगर इसकी वजह से ओहद पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाए ना, तो वो भी कम बात हो गई। यानी ओहद पहाड़ को खिसकाना किसी के लिए मुमकिन है? कोई नहीं कर सकता ये वाला काम, ठीक है। तो कितना मुश्किल, कितना बड़ा काम है ओहद पहाड़ को कोई हिला दे। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उस्मानी गनी रतान को शहीद कर देना, ये उससे भी ज्यादा तुमने बुरा काम किया, अजीम बुरा काम किया, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये वापस आ गए मदीना मुनव्वरा में, और इन्होंने ना फिर मजीद आगे जितने भी फितने थे उनके अंदर किसी में हिस्सा नहीं लिया। हत्ता कि जो आप लोगों के सामने सारी बातें हो चुकी हैं, अली रतान के दौर में बहुत मेजर जंगें भी हुई थी, जंगे सिफीन हुई थी और जंगे जमल हुई थी, जो मुसलमानों के दरमियान ही हुई थी, ठीक है। इन्होंने उनमें से किसी जंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया, बल्कि इन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार करी, बिल्कुल अलग तनहा तने तनहा होकर के ये बस अपने फैमिली के साथ रहना शुरू हो गए, ठीक है। दूसरे सहाबा ने अपना इज्तिहाद किया और कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने जंग में हिस्सा लिया, ठीक है। जैसे हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, ये लोग जो थे ये इन जंगों के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया था ना। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जी हिस्सा लेने वाले गलत थे और हिस्सा ना लेने वाले सही थे, बल्कि चूंकि ये सारे सहाबा ये आलिम दीन थे और इतने बड़े आलिम दीन थे जिसको मुज्तहिद कहा जाता है, ठीक है। तो अब मुज्तहिद जो होता है ना, वो जो भी फैसला करता है अल्लाह ताला की तरफ से उसको इजाजत होती है कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारा इज्तिहाद ये है कि तुम्हें जंग में हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, सईद बिन जैद का इज्तिहाद ये है कि जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बोथ आर राइट, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इश्तिहाद किया, उनकी ये नजदीकी में पहुंचे कि नहीं मुझे हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अच्छा फिर ये जो है वो यार इनके साथ एक औरत थी, उसने जो है ना वो झूठा इंतजाम लगाया इनके ऊपर और कहा कि सईद बिन जैद ने ना मेरी जमीन के एक टुकड़े के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब उस जमाने का जो अमीर था उसका नाम था मरवान बिन हकम, बहुत मशहूर मरवान बिन हकम, और यहाँ पे बल्कि सड़क का नाम भी है मरवान के नाम पे। तो मरवान बिन हकम ने फिर अदालत में इनको बुला लिया कि भाई आप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने औरत के जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो इन्होंने कहा कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ जबकि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ये बात सुन रखी है कि जिसने किसी की एक बालिश बालिश इतनी बड़ी इतनी जमीन के ऊपर भी अगर गलत कब्जा कर लिया तो कयामत के दिन उसके ऊपर जो है ना वो 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। क्या मतलब कि उस तौक कहते हैं गले के हार को, तो वो गले का हार फूलों का हार हो तो बड़ा हल्का हल्का सा होता है, बड़ा अच्छा होता है, खुशबू भी आती है, ठीक है। लेकिन अगर जमीन को यानी इतना बड़ा कोई एरिया मिट्टी पत्थर उसको जो है ना वो किसी हार में पिरो करके आपकी गर्दन में डाल दिया जाए तो क्या होगा फिर उसके बाद, गर्दन जो है वो तो खत्म हो जाएगी। नबी ने फरमाया कि 7 जमीनों का तौक बना करके उसके गले के अंदर डाला, यानी अजाब इतना बड़ा अजाब होगा किस बात के ऊपर, किसी एक बालिश जमीन के ऊपर नाहक कब्जा करने के ऊपर। ठीक है, तो मैंने जब अपने हबीब अलैहिस्सलाम से ये बात सुनी है तो मैं ये काम कैसे कर सकूं, यानी इस अनथिंकेबल, ऐसे होते थे सहाबा। नबी उसने किसी बात को मना कर दिया और इसके ऊपर अजाब को भी बता दिया, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता करने का। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम जाहिर है इतनी अहमियत देते ही नहीं है इस वजह से हमारे यहाँ बहुत बात बहुत आम है, कभी कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर रहा है, कभी कोई किसी की जमीन, हत्ता कि अपने रिश्तेदारी एक दूसरे की जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल कोई प्रूफ इनके पास भी नहीं था, कोई प्रूफ जो है वो खास उसके पास भी नहीं था, बस उसने तो इल्जाम लगाना था। ठीक है, उन्होंने आगे से बता दिया कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, सही है। और फिर इन्होंने जो है ना वो उस औरत के हक में बददुआ करी, बाकायदा बददुआ भी करी। ठीक है, कि ए अल्लाह आप जानते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, मैंने इस औरत के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया है, ए अल्लाह अगर आप जानते हैं, आप जानते हैं, अगर नहीं आप जानते हैं कि ये औरत झूठी है तो उसके झूठ की आप उसको ये सजा दीजिए कि इसके ऊपर जो है ना वो दुनिया ही में अजाब आ जाए। ठीक है, दुनिया ही में अजाब आ जाए, यानी अजाब तो इसके ऊपर आना है जो इसने हरकत करी है। ठीक है, दुनिया में अजाब आ जाए और ये अंधी होकर के एक कुएं के अंदर गिरे और लोगों को पता भी चले इसका। ठीक है, उसकी वजह क्या, क्योंकि इसने जो है ना वो क्या किया है,
बोतान
इल्जाम लगाया,
बोतान
बोहतान लगाया, नहीं तो फिर बददुआ देने की क्या जरूरत है, कयामत में इसको अजाब हो जाएगा। ये वाली बददुआ कि अंधी हो जाए और वो किसी कुएं के अंदर गिर करके हलाक हो जाए, ऐसी बद्दुआ क्यों दी?
के ऊपर बोल चुका है जानवर है, तो इससे ये दूसरे लोगों को जो अच्छे इस्लाम में इफेक्ट पड़ेगा कि के जो सहाबी हैं वो इस तरह
ठीक है, क्योंकि उसने जो इल्जाम लगाया था ना, कितना बड़ा इल्जाम लगाया था, इतना बड़ा जुल्म का इल्जाम कि सहाबी रसूल ने ये हरकत करी। ठीक है, तो अब अगर उस औरत का ये झूठ वाजह ना होता लोगों को तो इसका असर क्या होना था कि सिर्फ इनका जातीय मसला नहीं था वो सईद बिन जायद का, बलकि इसका मतलब ये था, नऊज़ बिल्लाह, वो सॉरी यार वो कल्लान के, इसका मतलब ये था कि पूरा का पूरा जो दीन है ना अल्लाह का जो दीन है वो लोगों की नजरों के अंदर डाउटफुल हो जाता। ठीक है, कि भाई नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, उन्हीं से तो हमें कुरान मिला है, उन्हीं से तो हमें नबी अलैहिस्सलाम की सारी टीचिंग्स मिली हैं। अगर वो ऐसे झूठे नाउज बिल्ला और ऐसे जालिम किस्म के लोग हों, दूसरों की जमीनें हड़प कर जाते हों, तो इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट द कुरान, वी कैन नॉट ट्रस्ट द हदीस, ठीक है, तो पूरा का पूरा दीन जो है वो डाउटफुल हो जाता है, और शैतान को मौका मिल जाता है कि इस दीन के बारे में लोगों को गलत फहमी में मुबतला कर दे, और फिर जाहिर है फिर शैतान का फिर फायदा हो जाएगा इसके अंदर। तो इस वजह से ना दुनिया में इस किस्म की सजा की जरूरत थी, तो इस वजह से उन्होंने जो है ना इस बात को समझा और उसके लिए उसने दुआ उसके लिए बददुआ करी, और वाकई फिर 1 माह के बाद ही उस औरत के साथ ऐसे ही हुआ कि वो अंधी हो गई 1 महीने के बाद ही, और वो अपनी जमीन में घूम रही थी, हत्ता कि एक कुआं आया उसको नजर नहीं आया, वो उसके अंदर गिरी और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक सैलाब भी भेजा, और सैलाब भेजने से क्या हुआ कि सैलाब जब आता है तो फिर जो जमीन के ऊपर मिट्टी विट्टी एक्स्ट्रा पड़ी होती है वो सैलाब के साथ चली जाती है ना, तो बकायदा उस जमीन के अंदर कुछ मार्किंग्स भी हुई हुई थी कि भाई ये जैद ये सईद बिन जैद रज़वान की जमीन इस मार्किंग के इस तरफ है, और इस मार्किंग के इस तरफ जो है ना वो उस वाली औरत की जमीन है। ठीक है, तो जब वो मिट्टी वहां से हट गई तो वो जो मार्किंग्स थी वो मार्किंग्स जो है वो वाजे हो गई, लोगों को पता चल गया कि भाई जमीन इनकी इधर थी इनकी इधर थी, उसका जो इल्जाम था बिल्कुल झूठा इल्जाम था। ठीक है, अच्छा, फिर इनकी औलादें जो थी वो माशाल्लाह काफी सारी, अल्लाह ताला ने इनको 13 बेटे और 16 बेटियां अता फरमाई। इनकी पहली शादी तो उम्मे जमील यानी उमर तान की जो सगी बहन थी उनके साथ थी, लेकिन बाद में इन्होंने और भी औरतों से निकाह किया और उनकी सारी औलाद हुई। फिर 50th हिजरी या 51st हिजरी में जब इनकी उम्र 81 ईयर्स की हो चुकी थी तो इनका इंतकाल हुआ, और उस वक्त ये भी वादी अकीक में ही रहते थे। जी अब
क्या एक लाइन उनकी थी, एक लाइन उनकी थी, तो फिर उन्हें ये क्यों नहीं समझा कि उन्हें कब्जा कर लिया जमीन पर, कोई आधी आधी जमीन में एक लाइन वाली।
नहीं, एक लाइन उनकी, एक लाइन है उनकी नहीं, बल्कि जैसे ये एक जमीन है, ये एक जमीन है, ठीक है, तो ये जमीन हजरत सईद बिन जैद की थी, वो जमीन उस औरत की थी। ठीक है, तो उनके दरमियान जो ये लाइन थी ना, ये लाइन छुप गई थी, मिट्टी विट्टी आ जाती है, लाइन छुप गई थी। तो उसने जो है ना वो झूठ बोला कि भाई ये जमीन जो है ना ये भी मेरी जमीन है, ठीक है, लेकिन लाइन तो नजर आ नहीं रही थी, तो इस वजह से चेक ही नहीं हो सकता था कि भाई वाकई वो सच बोल रही है कि वो झूठ बोल रही है। ठीक है ना, तो अब जब सैलाब आया ना तो वो लाइन नजर आनी शुरू हो गई कि भाई लाइन तो वहां पर थी, तो ये सारी की सारी जमीन सईदना की थी, वो सारी की सारी जमीन उस औरत की थी, और वो जो क्लेम कर रही थी ना कि ये वाला एरिया भी मेरा है, ये झूठ बोल रही थी। ठीक है, तो लाइन एक ही थी, लाइन से खारी ये पता चल रहा था कि इधर की जमीन इनकी है, इधर की जमीन इसकी। ठीक है, इस तरह से अभी क्लियर हो गया। बहरहाल तो इनका इंतकाल भी वादी अकीक में ही हुआ, वादी अकीक जो है मदीना मुनव्वरा से कुछ किलोमीटर बाहर का एक एरिया था, और हम पीछे जितने और भी कई अशरफ मुबशर साहबा को पढ़ चुके हैं कि वो भी वादी अकीक के अंदर ही रहते थे और वहीं पे उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन फिर उनको वहां से जन्नतुल बकी में ला करके दफन किया गया था। तो इनको भी जन्नतुल बकी में ला करके दफन किया गया। साद बिन अबी वकास रतान और अब्दुल्ला इबन उमर रतान, उन्होंने इनकी नमाज जनाजा उतारी, इन्हीं दोनों सहाबा ने उनको कब्र में भी उतारा, और इनसे 48 अहादीस मरवी हैं। ठीक है, तो ये मामला जो है वो मुकम्मल हुआ हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन का। इनके बाद आखिरी अशरा मुबशरा सहाबी रह गए हैं हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन, उनके बारे में इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन सब सहाबा कराम से सच्ची और शदीद मोहब्बत अता फरमाए, और इनके नक्श करम कदम के ऊपर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, असर की नमाज के लिए तैयारी कर लें और सफ़े बना